मेरे प्यारे युवा दोस्तों नमस्कार। फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय के तहत मैं माफी चाहूंगा कि अभी जिस विषय पर हम लोग लगातार बातें कर रहे हैं, उसे पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, पावर ऑफ एलिमिनेशन पर, लेकिन इस पर बात नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि दूसरे विषय लगातार आते चले जा रहे हैं। लेकिन मैं एक बात आपको बताऊंगा कि जो भी चर्चा हम लोग इस डेली ऑडियो लेक्चर में करते हैं वो सब आपकी दृष्टि से ही की जाती है और उसमें कोई भी चर्चा ऐसी नहीं होती जो मैं केवल समय को भरने के लिए लेकर करता हूं। सवाल ही नहीं उठता, मेरे पास बातें करने के लिए बहुत से सब्जेक्ट हैं, लेकिन चूंकि इसका जो चरित्र है वो करंट अफेयर्स का चरित्र है तो इसीलिए मैं इसके साथ कोई अन्याय नहीं कर सकता, एटलीस्ट करंट अफेयर्स के साथ। और जब मैं करंट अफेयर्स की बात कर रहा हूं तो मेरी निगाह में इसके तीनों चरण होते हैं, प्री, मेंस और इंटरव्यू, यानी कि आपकी पर्सनालिटी पर भी मेरा ध्यान रहता है दोस्तों। इसीलिए अगर किसी एक विषय को मैं लंबा लेकर चल रहा हूं तो एक तो उसमें डेली ऑडियो लेक्चर के तहत जो करंट अफेयर्स हैं उनका हस्तक्षेप हो जाता है और दूसरा डेफिनेटली मेरी जो बताने की पद्धति भी है ना, वो थोड़ी सी विस्तार के साथ बताने की पद्धति है ताकि वो चीज आप बहुत अच्छे तरीके से समझ सके, इसलिए भी थोड़ा सा डिले हो जाता है। तो मैं माफीनामे के साथ कहूंगा प्लीज बियर विथ मी, मुझे थोड़ा सा बर्दाश्त कर लें, मेरे साथ कदम ताल करने की कोशिश करें। तो आज जिस मुख्य विषय पर मैं आप सबसे बात करूंगा वो दार्जिलिंग चाय पर जो संकट आ गया है उसको लेकर के चर्चा करूंगा। लेकिन आइए पहले जो दूसरी खबरें हैं उन्हें देख लेते हैं। दिल्ली नगर निगम के चुनाव हो गए हैं, हालांकि एक नगर निगम के चुनाव हैं, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं होने चाहिए, लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि देखिए 15 साल से दिल्ली नगर निगम पर भारतीय जनता पार्टी शासन कर रही थी, आप कह लीजिए, या उसका बहुमत था। अब उस पर आपका बहुमत हो गया या कह लीजिए आपका शासन हो गया है, ठीक है, बीजेपी को आपने रिप्लेस कर दिया 15 साल के बाद। इसका अर्थ क्या हुआ, यहां केवल एक छोटा सा एक उदाहरण भर है और चूंकि आप बकायदे कॉन्स्टिट्यूशन के जानकार हैं, सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हैं, लोकतंत्र में रह रहे हैं, तो इससे एक निष्कर्ष निकलता है और वो ये है कि किसी भी पार्टी को, राजनीतिक जो दल होते हैं, अजेय नहीं माना जाना चाहिए, न तो पार्टी के खुद लोग अपने आप को अजेय माने और न ही जनता ये मान करके चले कि नहीं अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब ही है राजनीतिक दलों में हो रहे बदलाव, यानी कि जो सत्ता पर जो राजनीतिक दल होते हैं कुछ समय के बाद उनमें बदलाव हो जाने चाहिए। अदरवाइज कभी कभी बहुसंख्यक दल का भी, आप यूं कह लीजिए बहुसंख्यकों के भी तानाशाही का खतरा पैदा हो जाता है। इस समीक्षात्मक दृष्टि के लिए ये पॉइंट मैं आपके दिमाग में दर्ज करा रहा हूं। दोस्तों, कल लोकसभा में एक बहुत इंपॉर्टेंट विधेयक प्रस्तुत किया गया है और मुझे नहीं लगता कि इस विधेयक के बारे में अखबारों में कुछ छपेगा, थोड़ी बहुत सूचना के रूप में बात आ जाएगी तो बस, दैट्स ऑल। लेकिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर अभी से नजर रखिएगा, लोकसभा में पेश कर दिया गया है, इस पर बहस होगी, देखते हैं कि क्या होता है। यह विधेयक है समुद्री डकैती रोकथाम विधेयक, समुद्री डकैती रोकथाम विधेयक, और ये 2019 है, याद रखिए 2019 में भी इसे लोकसभा में पेश किया गया था, लेकिन बाद में फिर इसे जो विदेश मामलों की जो स्थायी समिति होती है उसको सौंप दिया गया। आपको मालूम है कि हर मंत्रालय के साथ स्थायी समितियां होती हैं, स्थायी समिति को सौंप दिया गया ताकि इस पर विस्तार से बातचीत की जा सके, इसमें और कोई संशोधन होंगे तो सुझाए जा सके, क्योंकि जब लोकसभा में पेश किया गया था यह विधेयक तो डेफिनेटली इस पर बहस हुई होगी, सभी राजनीतिक दलों ने अपने अपने विचार दिए होंगे, तो उनका सब संकलन करके फिर स्थायी समिति को सौंप दिया गया कि भाई आप देखिए इस तरह के प्रश्न उठाए जा रहे हैं, इस तरह के मत दिए जा रहे हैं, सुझाव हैं, कैसे इनको एकोमोडेट किया जाए। तो स्थायी समिति ने उस पर विचार विमर्श करके उसका जो फाइनल ड्राफ्ट था वो विदेश मंत्रालय को सौंप दिया और हमारे विदेश मंत्री जी ने कल इसे लोकसभा में प्रस्तुत कर दिया है, देखते हैं कि क्या होगा। अब आपको लगेगा कि समुद्री डकैती कैसे हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गई, दोस्तों नेशनल सिक्योरिटी आपके सिलेबस में है, राष्ट्रीय सुरक्षा, और समुद्री डकैती बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसका एक अंश है। जब ये विधेयक पारित हो जाएगा तो हम लोग इस पर बातें करेंगे। आज के अखबार तो भरे हुए हैं, देखते हैं आप, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट बढ़ा दिया है, यहां मैं कुछ भी बताने इसके बारे में नहीं जा रहा हूं क्योंकि बहुत डिटेल में कई बार बातें हो चुकी हैं, लेकिन ये मैं जरूर कहूंगा, हर दो महीने में ये आती है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्लीज इसे सिर्फ रटे नहीं, इसे बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करें, चारों तरफ से समझें, डेप्थ में समझें और सबसे बड़ी बात है कि व्यावहारिक स्तर पर समझें। ऑनलाइन लेक्चर्स के तहत ये कोशिश की गई है, इसे आपको समझना ही समझना है क्योंकि मौद्रिक नीति है और किसी भी राष्ट्र के लिए जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है और आपके एग्जामिनेशन के लिए डेफिनेटली ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं विचार करने के लिए आपको दो प्रश्न बता रहा हूं, आप सिर्फ विचार कीजिएगा। मुझे इस बात की सच में बेहद खुशी है कि आप लोगों ने जिस तरीके से अभी हम लोग पावर ऑफ एलिमिनेशन के तहत जो वॉरेन बफेट के सिद्धांत की बात कर रहे थे उस पर जो मैंने आप सबकी प्रतिक्रियाएं मांगी और जिस तरीके से आप सब ने उत्तर दिया अभिनंदनीय है। दोस्तों कल भी मैंने इस पर बात की थी, आज भी मैं तारीफ किए बिना नहीं रुक पा रहा हूं। इसका मतलब है कि सोचने समझने की शक्ति तो आप सब में है, प्लीज उसका इस्तेमाल कीजिए। और इसीलिए मैं आज भी ये दो प्रश्न आपको दे रहा हूं, जरूरी नहीं कि आप मुझे लिखकर भेजें। देखिए आप अपने पास लिख करके रखें, उस टॉपिक पर अपने मित्रों से चर्चा कर लें, पर्याप्त है, लेकिन लिख करके रखेंगे तो ज्यादा अच्छा है। और ये आपके लिए है, याद रखिए ये मेरे लिए नहीं है। मैं चाहता हूं कि आपकी सोचने की आदत पड़े और अगर सोचने की आदत नहीं होगी तो आपको क्या लगता है कि आप पावर ऑफ एलिमिनेशन डेवलप कर लेंगे? जब सोचेंगे ही नहीं तो एलिमिनेट करेंगे कैसे या अनुमान कैसे लगाएंगे? पावर ऑफ एस्टिमेशन भी आपके अंदर नहीं आ सकती। तो दो प्रश्न है, बहुत सरल प्रश्न है। पहला तो यह है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 35 आधार अंक बढ़ा दिए, तो इसका जो एफडी होता है फिक्स डिपॉजिट उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर विचार कीजिए। और बहुत सरल है, हो सकता है कि सुनते ही आपके दिमाग में इसका उत्तर क्लिक कर गया हो। दूसरा यह है कि हम बैंक से लोन लेते हैं और इसके बाद एमआई देते हैं, मंथली इंस्टॉलमेंट देते हैं, तो मंथली इंस्टॉलमेंट पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? मंथली इंस्टॉलमेंट, जैसे मान लीजिए कि आपने लिया हुआ है, बैंक से लोन लिया हुआ है और उसके लिए आप 1000 रुपए का हर महीने भुगतान कर रहे हैं, ईएमआई जिसे आप कहते हैं, उस पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा इन 35 आधार अंकों का? बस इस पर आप सब विचार करें और अपने अपने छोटे छोटे उत्तर, बेहतर होगा कि आप लिख भी लें क्योंकि जब आप उत्तर लिखते हैं तो भाषा पर भी आपकी पकड़ बनती चली जाती है। दोस्तों एक छोटी सी जो खबर अखबारों में छपी है मुझे लगता है कि आपको नोट कर लेना चाहिए क्योंकि ये सरकार का स्टेटमेंट है। हमारा जो केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय है उसने लोकसभा में बताया है कि 2017 से 2022 तक सीबीआई ने, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई ने, सांसदों और विधायकों के खिलाफ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के खिलाफ 56 केस दर्ज किए और इनमें से 22 मामलों में सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। 56 केस दर्ज किए और 22 के खिलाफ चार्जशीट दायर की जा चुकी है। चार्जशीट क्या है कि आप समझते होंगे, एक तो एफआईआर होती है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट आपने थाने में दर्ज करा दी और इसके बाद ठीक है। चार्जशीट होती है कि जब किसी के ऊपर कोई इल्जाम लगाया जाता है तो पुलिस उसकी फिर इंक्वायरी करती है, इंक्वायरी करने के बाद एक रिपोर्ट बनाती है, चार्जशीट, इन पर ये चार्ज लगाए जा रहे हैं, फैक्चुअल चीजें जुटाती है तो एक बकायदे रिपोर्ट तैयार करती है, तो और फिर वह रिपोर्ट जो है कोर्ट में पेश की जाती है। कोर्ट उस रिपोर्ट को पढ़ता है और रिपोर्ट को पढ़ने के बाद देखता है कि सच में इन पर यह मामला कुछ बन रहा है या नहीं बन रहा है, और अगर मामला बन रहा है तो उस पर फिर सुनवाई शुरू हो जाती है। बस वो चार्जशीट है। कभी कभी इस तरह के प्रश्न भी प्री में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैंने थोड़ी सी इसकी चर्चा कर दी। न्यायालय पर आज टिप्पणी आई है, उपराष्ट्रपति जी की नहीं, राज्यसभा के सभापति की, हालांकि दोनों एक ही होते हैं लेकिन राज्यसभा के सभापति के रूप में धनखड़ जी का यह पहला संबोधन था और पहले ही संबोधन में उन्होंने बकायदे न्यायिक नियुक्ति कानून, जो आयोग के लिए कानून बनाया गया था, 99th संवैधानिक संशोधन विधेयक था, उस पर उन्होंने बात की। आपको मालूम है कि 2014 में पेश किया गया था जिसके तहत न्यायिक आयोग, न्यायिक नियुक्ति आयोग की बात कही गई थी, संसद से पारित हो गया था, राष्ट्रपति जी ने हस्ताक्षर कर दिए, लेकिन 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया था। इसको लेकर के जो सभापति जी ने कहा वो उसे आप ध्यान से सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि यह संसदीय संप्रभुता के साथ गंभीर समझौते वाला एक मामला है। यह उस जनादेश का असम्मान है जिसके संरक्षक उच्च सदन और लोकसभा हैं। संसद द्वारा पारित एक कानून जो लोगों की इच्छा को दर्शाता है को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया और दुनिया को ऐसे किसी भी कदम के बारे में कोई जानकारी नहीं है। यानी कि दुनिया में ये पहला ऐसा मामला है जहां शायद ऐसा हुआ हो। इस पर भी थोड़ा आप विचार करें, क्योंकि अगर राज्यसभा में अपने पहले संबोधन में सभापति ये कह रहे हैं तो डेफिनेटली ये सामान्य बात नहीं है, ये थोड़ा सा गंभीर मामला है। दोस्तों, अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर, दार्जिलिंग चाय को लेकर। अगर आप इस साल जो मेंस के एग्जाम हुए हैं उसका फर्स्ट पेपर जो था जनरल स्टडीज का पढ़ेंगे तो उसमें रबर के बारे में एक प्रश्न पूछा गया है कि रबर उत्पादन जो क्षेत्र है आप उन्हें बताइए, और फिर ये जो रबर की खेती है किस तरीके से पर्यावरण पर प्रभाव डाल रही है, नुकसान पहुंचा रही है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था। चूंकि आज मुझे एक प्रश्न मिल गया, एक रिपोर्ट मिल गई चाय के उत्पादन को लेकर, तो मुझे लगा कि इस पर बात की जानी चाहिए। और यह जो चाय का उत्पादन है स्पेशली दार्जिलिंग चाय के संबंध में है। भारतीय चाय बोर्ड है जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है इसकी, भारतीय टी कंट्रोल बोर्ड, उसने केंद्र से 988 करोड़ रुपए की मांग की है, 988 करोड़ रुपए की मांग की, विशेष पैकेज की मांग की, ताकि इस दार्जिलिंग चाय को बचाया जा सके। दार्जिलिंग चाय यानी कि वह चाय जो दार्जिलिंग क्षेत्र में होती है, ब्रांडेड चाय है, विदेशों में इसकी मांग भी है। तो पहले देखिए कि दो संकट इसके सामने क्या है। पहला संकट यह है कि नेपाल में भी चाय पैदा होती है और नेपाल में जो चाय पैदा होती है उसकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कम है, और ये जो नेपाल में चाय पैदा होती है इसे दार्जिलिंग चाय के नाम से सीधे विदेशों में भेजा जाता है, और चूंकि उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है तो चाय सस्ते में बेच दी जाती है। तो दार्जिलिंग चाय के सामने पहला संकट यह है। दूसरा संकट तस्करी का है। तस्करी का यह है कि जो दूसरे चाय हैं वो भी दार्जिलिंग चाय के नाम से बेची जा रही हैं, तस्करी हो रही है। मतलब मजेदार बात यह है कि दार्जिलिंग में चाय का उत्पादन साल भर में लगभग लगभग 1 करोड़ किलो है, और विदेशों में दार्जिलिंग चाय जो बिक रही है वो 2 करोड़ किलो है। तो ये 1 करोड़ किलो और कहां से आ रही है? तस्करी। तो जो मेन प्रॉब्लम है वो तस्करी का है, लेकिन चूंकि मुक्त व्यापार समझौता है तो दार्जिलिंग चाय की तस्करी को रोकने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। फर्स्ट पार्ट। जो सेकेंड पार्ट है वो इसके सामने संकट क्या है, जलवायु परिवर्तन का संकट है। और चूंकि ये जलवायु से रिलेटेड है इसीलिए मैंने इस टॉपिक को यहां लिया भी है। हो यार ये रहा है कि पिछले लगभग लगभग 20 सालों से जो दार्जिलिंग चाय के उत्पादन का जो ड्यूरेशन होता है वो लगभग लगभग 1 महीने कम हो गया है जलवायु परिवर्तन के कारण। इसका सीजन 1 महीने घट गया है, और सीधी सी बात है कि अगर 1 महीने घट गया है तो इसका सीधा प्रभाव, दुष्प्रभाव कह लीजिए, उत्पादन पर पड़ेगा। और दार्जिलिंग चाय का उत्पादन लगभग 35% घटा है मौसम के चलते। इसी बीच में कुछ स्थान ऐसे हैं जहां चाय का उत्पादन होता है वहां का टेम्परेचर भी बढ़ा है। एवरेज टेम्परेचर 0.5 डिग्री बढ़ गया है, और उस जिले का नाम है कुर्सियोंग। टेम्परेचर बढ़ गया है, वर्षा थोड़ी सी कम हो गई है, वर्षा भी थोड़ी कम हो गई, वर्षा कम हो गई, टेम्परेचर बढ़ गया है, मौसम का जो ड्यूरेशन होता है वो 1 महीने कम हो गया है। इसका इम्पैक्ट ये हुआ है कि दार्जिलिंग चाय का जो उत्पादन है वो 35% घट गया। आप सोचिए, लागत वही है, प्रोडक्शन 35% घट गया तो चाय की कीमत और ज़्यादा बढ़ गई। इसीलिए जो बोर्ड है उसने सरकार से विशेष पैकेज की मांग की है। तो दोस्तों, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर की क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं। ईमेल लिखने वाले सभी दोस्तों को धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में से 2 मित्रों के नाम हैं, अल्पना कुमारी पावापुरी बिहार से और दीपेश झा बिठौली बिहार से। आप दोनों का बहुत बहुत आभार। और इसी के साथ ही दोस्तों, आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।